अगर पिछले सुने हुए लेसन के ऊपर आप अमल नहीं कर पाएंगे तो अगली बात आपको फिर फ़ायदा नहीं देगी। हमारा तरीक़ाकार इंटरेक्टिव होगा, तो चलिए अगली बात को शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह तआला की तौफीक और उसकी रहमत से हम शख्सियत को मुअस्सर बनाने के सिलसिले में अगली बात का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी रिवायत से बात शुरू करूंगी। आपने फरमाया कि इंसान सोने चांदी की कानों की तरह होते हैं। कानें क्या होती हैं? जहाँ से माइंस निकलते हैं पहाड़ों के अंदर। जो तुम में ज़माने जाहिलियत में बेहतरीन औसाफ के मालिक थे, वो इस्लाम में भी बेहतर हैं। ये अच्छे औसाफ यानी क्वालिटीज़ इंसान का कीमती सरमाया हैं और यही इनकी कामयाबी का राज और ज़रिया भी। कि किसी इंसान की शख्सियत इस बात से बालातर होती है कि उसका क्या दीन हो या उसका क्या मज़हब हो। ये जुमला लिख लीजिए, इंसानी शख्सियत उसके दीन की मुख्ताज नहीं होती। इंसान के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, वो दुनिया के किसी खत्ते में चला जाए, किसी दूसरे दीन में पैदा किया जाए या उसको इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन उसकी शख्सियत उसका साथ नहीं छोड़ती। हाँ, थोड़ा सा रुख बदल जाता है। इंसान के सामने कोई बुनियादी मकसद नहीं होता तो नतीजा क्या होता है कि वो चीज़ उसकी गलत चीज़ों में इस्तेमाल होने लगती है। लेकिन जब एक इंसान का दीन दुरुस्त होता है तो उसकी वो सारी सलाहियतें दीन की तरफ आने लगती हैं, अच्छे काम की तरफ आती है। मसलन अगर एक शख्स बहादुर है तो वो बहादुरी उसकी उसके अगर दुनिया के कामों के लिए थी और वो उससे सिर्फ लड़ने झगड़ने का और लोगों के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करने में गुजरता था, तो अगर वो दीन पे आएगा तो उसकी वो बहादुरी अल्लाह के दीन के दिफा के लिए इस्तेमाल होगी। तो लिहाजा हम सब ने अपने आप को डिस्कवर करना है। आपको पता है कि माइंस पहाड़ों के अंदर होते हैं, इसी तरह इंसानों के अंदर भी बहुत सारी छुपी हुई सलाहियतें होती हैं, लेकिन हमने उसको कभी डिस्कवर नहीं किया। अफसोस के साथ कहूँगी कि हमारे माशरे में इसका रुझान ही नहीं, रिवाज ही नहीं। हम घंटों इस्तेमाल कर सकते हैं शादियों ब्याहों के लिए, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए हम घंटों लगा सकते हैं, एक एक फंक्शन के लिए हम कई कई दिन तक जा सकते हैं, माल कमाने के लिए भी वक्त लगाने को तैयार हैं, दूर से खाना खाना हो तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं वक्त मिलता तो हमें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं मिलता। लिहाजा सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड हमारी अपनी ज़ात होती है। अगर हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, पहले सोचिए, दोबारा सोच लें। जो लोग ये कमिटमेंट नहीं कर रहे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वैसे सुनना भी फ़ायदा देता है सिर्फ मालूमात तक, ताकि दूसरों को हम परख लें, लेकिन अगर हकीकत में आप अपनी शख्सियत को बदलना चाहते हैं ना, तो फिर आपको वक्त देना पड़ेगा। और यहाँ एक और बात कहूँ कि उम्र का कोई ताल्लुक नहीं इससे। अगर आप 60 साल से ऊपर जा चुके हैं, इवन 70 में हैं, या अभी आप अर्ली टीन्स में हैं, इंशाल्लाह ताला दोनों सूरतों में बात मुमकिन है। क्योंकि जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब हमारे अंदर यकीन पैदा होता है ना एक काम का, कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं चेंजेबल हूँ, आई कैन चेंज माई सेल्फ। और हम सबको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे शुक्र गुज़ार होना चाहिए अल्लाह का भी और इस वक्त का भी, कि हमें हमारी छुपी हुई चीज़ें पता चलेंगी और फिर हम उसका इलाज करेंगे। आपका बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपकी छुपी हुई चीज़ें आपके सामने लाए और फिर आपकी मदद करे कि आप उसको अपने अंदर से निकालें। मैंने देखा है कि लोग अपने बारे में बहुत गलत फहमियों का शिकार होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने अंदर समझता है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा फिर जब उनका कोई प्यारा उनको यकीन दिलाता है, एहसास दिलाता है, या इंसान किसी तजुर्बे से गुजरता है, तो वो अपने बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करता है। इसीलिए तो आप देखिए कि हमारे बुज़ुर्ग क्या कहा करते थे कि हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो ज़िंदगी तजुर्बात का नाम है। तजुर्बात के बाद तो इंसान अपने आप को बदलना चाहता ही है। क्यों ना हम पहले से ही अपने आप को देख लें। क्योंकि अरबी का एक मुहावरा भी है कि जो शख्स दरवाज़ा खटखटाता है और कोशिश भी करता है, वह दाखिल हो ही जाता है। अगर आपने वाकई कोशिश की, इंशाल्लाह एक खूबसूरत पर्सनैलिटी आपकी मुंतज़िर है, उसको शेक हैंड कीजिए। इंशाल्लाह वो दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दिन होगा, जिस दिन आपको अपनी कोई एक बुराई पता चल गई, आपने उसको रियलाइज़ कर लिया اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دیا، وہ رات جو ہوگی نا آپ کو نیند جیسی آئے گی، شاید آپ نے ابھی اس کو کبھی انجوائے نہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک اچھی عادت جب آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کے اندر ہے لیکن مزید اچھی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایک بہت پیاری ڈسکوری ہوگی۔ تو ہم مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت یا پرسنالٹی کیا چیز ہے۔ شخصیت چلتی پھرتی عادتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی مختلف لوگوں نے جو تعریفیں کی ہیں سب کا خلاصہ ایک ساتھ کروں اگر تو کیا ہے؟ چلتی پھرتی عادتوں کے مجموعے کا نام۔ لکھیے ذرا اپنے نام کے آگے، میری شخصیت کیسی ہے؟ جیسی میری عادتیں ہیں۔ چلتی پھرتی سے مراد یہ ہے کہ ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت جو میرا معاملات ہوتے ہیں، یہی ہے میری شخصیت۔ اب میں اس کو کوئی اور نام دوں، میں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقے لاحقے لگائے ہوں، لوگ مجھے باس کہیں، لوگ مجھے میڈم کہیں، لوگ مجھے سر کہیں، یہ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں اصل میں وہ ہوں جو میری عادتیں ہیں۔ اور اچھی عادات انسان کی اچھی شخصیت ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں وہ کہاں پہنچے گا، آگے بڑھے گا یا کہیں رک جائے گا، اس کا بہت بڑا انحصار انسان کی عادات پہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں لباس کی پاکیزگی، اس کی گفتار میں نرمی، کھانے پینے میں وہ اچھے مینرز رکھتا ہے، جسمانی ضرورت کے سلسلے میں ورزش اور غسل کی جانب توجہ دے، عقل کی تہذیب و تربیت کی جانب توجہ دے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان وہ تمام کامیابیاں حاصل نہ کریں جو دنیا کے کسی بھی انسان کو حاصل ہوئیں۔ تو لہٰذا ہم نے انشاءاللہ تعالی چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی چیزیں ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ اور شخصیت ایک انسان کی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر میں اپنی شخصیت کی وجہ سے ماحول میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ چلیے ایک ایکٹیویٹی کریں گے، میں بولوں گی، آپ سوچیں گے، تین قسم کے لوگوں کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میں ان تین میں سے کون سی ہوں۔ ایک صورتحال آپ کے سامنے کریٹ کرتی ہوں، پھر آپ بتائیے کہ آپ ان تین میں سے کون سے لوگ ہوں گے۔ بالفرض ایک نہر ہے، سوچ لیا آپ نے، امیجن کیجئے، بڑی تیزی سے بہ رہی ہے، اتنا پانی ہے اس میں کہ اس کے ارد گرد کی بستیوں میں تباہی ہو رہی ہے، اور جو بستی میں رہنے والے ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ اگر اس کا پانی نہ روکا، اسی طرح یہ بہتا رہا، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ اب بتائیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کریں گے، سوچیے آپ، میں 5 سیکنڈ دے سکتی ہوں آپ کو۔ نہر ہے، بہت تیزی سے پانی اس میں آ رہا ہے، بستی کے اندر سیلاب اور فلڈنگ ہو رہی ہے، اگر اسی طرح پانی آتا رہا تو بس ساری بستی ڈوبے گی، اب اس مسئلے کا حل آپ کیا کریں گے؟ چلیے اب آپ نے سوچ لیا ہوگا، اس کو لکھ لیں، اس کو کاٹیے گا نہیں، کیونکہ یہی چیز پھر آپ بعد میں ڈسکور کریں گے۔ تھوڑی سی میں آپ کی مدد کرتی ہوں، تین قسم کے گروہوں کا ذکر کرتی ہوں، پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ کیا بہتر حل تھا۔ ایک گروہ ایسا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی تمام قوت اور اسباب اس کو روکنے اور اس کے فلو کے آگے کوئی رکاوٹ لگا دیتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہر کے آگے کوئی بیریئر لگا دیتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی سی لوہے کی چادر، کوئی کچھ، جیسے ڈیمز ہوتے ہیں، ایک وال لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کچھ اور دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک حل نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ اس کا سورس ڈھونڈتے ہیں کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، اور اس سورس کو اگر ہم نے بند کر دیا تو نہر کا زور کم ہو جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ چلیے یہ دوسرا گروہ تھا، ابھی میں نتائج نہیں بتاؤں گی کہ کیا ہوئے، آپ پہلے اپنے آپ کو چیک کریں گے۔ تیسرا ایک گروہ تھا، اس نے کہا کہ یہ بھی درست بات نہیں، اس نے نہ تو پانی کو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کا کوئی سورس ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے اور بند کیا جائے، اور نہ کوئی رکاوٹ ڈالی، بلکہ اس نے کیا کیا کہ ایک ایسا راستہ بنا دیا، اس نے نہر کا رخ کچھ اس طرح سے موڑ دیا کہ جہاں خشک زمینیں تھیں، بنجر زمینیں، جہاں پانی کی ضرورت تھی، یا کوئی پانی کے گھڑے تھے جہاں تالاب بن جائیں، اس طرف اس نہر کا رخ موڑ دیا۔ چلیے اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو تینوں باتوں کے سننے سے پہلے اپنے لیے سوچا تھا وہ کیا تھا؟ अब आपको मैं सासा बताती भी जाती हूँ, आपने पहला सोचा था, आपने दूसरा, आपने असबाब, बस ये आपकी डिस्कवरी हो रही है ना। अब आप देखिए कि जिसने पहली बात की उसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। अब हुआ क्या कि जब वो पानी को रोकने के लिए आगे कोई दीवार लगाता या कोई उसके आगे लोहे की चादर डालता, फ़ायदा क्या? एक जगह से पानी को रोकते तो दूसरी तरफ से निकलने जाता, बल्कि प्रेशराइज होके मज़ीद तबाही फैलती, बेकार था। कहते हैं ना, दरियाओं के आगे बंद नहीं बनते, दरिया बहते ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी नदी नालों को तो फोर्स कर सकते हैं, लेकिन दरियाओं के बंद नहीं बनते। अब दूसरे जिन्होंने उसका कोई सोर्स ढूंढना चाहा, तो आप बताइए कि क्या सोर्स मिल सकता है? अगर मिल भी गया, वो एक सुराख को बंद करेंगे ना कि यहाँ से पानी निकल रहा है, तो दूसरी तरफ से पानी निकलने लगा और चश्मे के उबलने में कोई कमी ना आई, और सारे सोर्स तो ढूंढ ही नहीं सकता। इतनी बड़ी नहर को थोड़ी बंद कर सकता है, कोई ज़मीन में से छोटा सा एक फवारा निकल रहा उसको तो बंदा बंद करे, इतनी बड़ी नहर को कैसे बंद करे? गोया कि ये भी फेल हो गए। अब देखते हैं तीसरे को। असल में तीसरा शख्स कामयाब था। उसने ना तो पानी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसने जज किया कि पानी नहीं रुकेगा, ये मेरे बस में नहीं, और ना उसने उसके आगे रुकावट डालने की कोशिश की। उसने क्या किया? उस पानी का बेहतरीन इस्तेमाल क्या किया जाए कि इस पानी को इस्तेमाल किया जाए और वो उस चीज़ को फ़ायदा दे जिसकी वहाँ ज़रूरत है। तो असल में कामयाब था ये तीसरा गिरोह। इसने रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया, वसाइल जो थे उसका अच्छा इस्तेमाल किया, और नुकसान की बजाय फ़ायदा हो गया। और पहले जो दो गिरोह थे ना, उन्होंने अपना मौका भी ज़ाया कर दिया और वक्त भी ज़ाया किया, और ऐसी मेहनत की जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। यही है मिसाल अमली ज़िंदगी में। आप देखिए कि नहर के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं ना, पानी बहता है तो दो ही चीज़ें हैं ना, या तो वो पानी बह रहा होता है और दूसरी उसके साथ चलने वाली मिट्टी। और इंसान किन चीज़ों से बना है? क्या उसके अंदर भी बुनियादी यही दो फैक्टर नहीं है, या पानी है या मिट्टी है? हर इंसान को अल्लाह ताला ने खूबियाँ दी हैं, कुछ सलाहियतें दी हैं, हम उन पर चेक नहीं लगा सकते, बंद नहीं कर सकते आप सुराख। आपका एक बच्चा है ना, वो ब्रेव है, और आपका दूसरा बच्चा जो है ना, वो शाय है, ठीक है, वो रहेंगे। थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अक्लमंद कौन है जो अपनी आदात को पहचान के उनका बेहतरीन इस्तेमाल करे? मसलन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने किसी को बोलने की सलाहियत दी है, बहुत खूब बोलता है। आप ख़ुद अपने आप को देखें, इस वक्त बच्चों की बात ना ही करूं तो बेहतर है, आप अपने आप को देखें, बहुत बोलने की सलाहियत है, खूब टॉकेटिव है। अब ज़ुबान चुप रहती नहीं, दिल चाहता है बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं। अब नतीजा क्या होगा? जब आप बोलेंगे तो कितनी गलतियाँ करेंगे और कितना वक्त ज़ाया करेंगे, और हर वक्त अपने सर में दर्द रखेंगे और दूसरों के, बजाय ये करने के अगर आप उस बोलने को मुअस्सर कर लें, अपने उस बोलने की सलाहियत को इंसानियत के फ़ायदे में लगा दें, तो वो बोलना आपके लिए रहमत हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज अल्लाह सुबहान तआला ने हमें दिए, अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें तो हम नाकाबले तस्खीर और मुअस्सर शख्सियत बन सकते हैं, जिसको कहते हैं ना अनकॉन्करेबल, कोई फिर हमें कॉन्कर नहीं करेगा। इतने इफ़ेक्टिव हो जाएंगे कि जहां हम खड़े होंगे कोई हमारी बात को निगेट नहीं कर सकेगा। ज़रूरत है इस बात की कि दीन और दुनिया के तकाजे पूरे किए जाएं, और इसके लिए देखिए सिर्फ मुताले की ज़रूरत नहीं होती। जो इंसान अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहता है ना, उसको प्लानिंग करनी होगी, एक गोल सेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। चलिए अब यहाँ पे रुकेंगे, आप वक्त पूरा हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन उसमें हम तकरीबन 10 से 12 ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो हमारी शख्सियत के अंदर खूबसूरती पैदा कर सकती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आपने पूरा वीक सोचना है, इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करके अपने आप को चेक किया करें। दुनिया में किसी को भी किसी वक्त कुछ भी करते देखें ना, तो फौरन ये सोच लिया करें कि मैं इसकी जगह होती तो क्या करती। इवन आप ड्राइव कर रहे हैं, सामने आपने देखा कि कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ था, एकदम उसने अपनी गाड़ी को इधर उधर करके निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने सोचा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन उसने बहुत आगे नहीं देखा, वो पहले तो थोड़ा रिलैक्स था, आगे जाके और फंस गया। पीछे बैठे आप सोचा करें कि अगर मैं होती तो क्या करती। किसी ने जल्दी में जो रेड लाइट है उसको क्रॉस कर लिया और एकदम ज़बरदस्त किस्म की ब्रेक लगानी पड़ी, मैं होती तो क्या करती। तो इंशाल्लाह अगले सेशन से पहले हमारा होमवर्क यही है कि हमने लोगों के रवैयों को देख के अपने आप को चेक करना है, मैं होती इनकी जगह तो क्या करती। अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे और आपकी भी मदद करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।